शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। इस पे नहीं कोई चर्चा कि क्यों कर रही है, हैरत इस पे कि इसको गुलाम मिला। इमाम इब्ने कय्यिम ने इस आयत से 10 पॉइंट निकाले हैं कि उन्होंने इसको कितना जलील करना चाहा कि देखो पहल की, फिर गुलाम की तरफ आई, फिर उसके पीछे चली गई, इसको कोई और नहीं मिला सरी गलती में। इससे पता चलता है कि ये किटी पार्टीज और ऐसी पार्टी जहां लोग बैठते बातें करते और आदतें होती, वहां ऐसे ही किस्से चलते हैं, स्कैंडल्स बन गए। उस औरत का और वजीर की बीवी थी, स्कैंडल बनता भी ना। और गलती क्या की कि एक गुलाम को भी ना उठा सकी। और आप देखिए उस औरत का हाल क्या, कि नाकाम भी हुई तो ना बदनाम भी हुई, काम भी ना कर सकी अपनी ख्वाहिश का लेकिन बदनाम भी हो गई। और शौहर कौन सा था, लिबरल हस्बैंड, इट्स ओके चलो छोड़ दो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लम से इतनी मोहब्बत करती थी, हजरत यूसुफ के किस्से के बारे में कहती हैं जो बात वो अगली आयतों के साथ सुनाती हूँ। औरतों के अंदर जब चर्चा हुआ कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर दिया, हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है, इसने जो इनकी मक्काराना बातें सुनी तो इनको बुलावा भेजा यानी इनवाइट किया, और इनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और जियाफत में हर एक के आगे एक छुरी रख दी, फिर ऐन इस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, इसने यूसुफ को इशारा किया कि इनके सामने निकला। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, खाशा लिल्ला, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। यानी देखिए कितनी ढिठाई है कि उनको कह रही है तुम सबने इतनों में इसको देखा है, तो मुझे सोचो, मैं तो उसके साथ एक घर में इतने साल से रह रही हूँ, यानी फिर मुझे तो कितना ही उसके ऊपर फरिश्ता ना होना पड़ेगा। जब जरूरत खत्म होती है, याद रखिए यहां से आपको उस मुआशरे में मिस्र का कल्चर दिखेगा, वापिस आज के दौर पे ले आइए। मिस्र उस दौर का एक वेस्टर्न कंट्री था, इजिप्शियन कल्चर बदनाम कल्चर था। जब किसी सोसाइटी में औरतें मर्दों से ज्यादा खुलने लगे, बेहया हो, मॉडर्न होने के नाम पर इंसानियत से गुजर जाए, अपने शौहर को कुछ समझने की बजाय दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात हो, तो यही फितने पैदा होते हैं। उस शख्स ने अपनी बीवी की इस बात को इतना क्यों नहीं लिया है हम, क्योंकि ये आम था, बल्कि कहते हैं कि हो सकता है उसके भी अपने कई मामले बिगड़े हों, कि जब परवर्टेड सोसाइटीज जहां अल्लाह को छोड़ दिया जाए तो वहां जिना जरूर आम होगा, लिहाजा वहां किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उस औरत ने तन्हाई में जिस काम का इरादा किया, उन औरतों ने उस महफिल में बैठकर उसी काम का इरादा कर लिया, बिगाड़ की हद है। क्या पता चला कि किसी सोसाइटी में इससे ज्यादा बिगाड़ क्या होगा कि मर्दों को पता चल भी जाए कि कसूर औरतों के, फिर भी वो उनको कैद ना कर सके। यहां भी ऐसे ही हुआ, ये सारी बातें करके जब वो सारे मामले खत्म हो गए तो अजीज की बीवी कहने लगी, देख लिया ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी, हाँ बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी। इसको हाईलाइट करें, इकरारे जुर्म कर रही है, और अगर इस्लामी अदालत होती तो ये रजम कर दी जाती, खुद इकरार किया कि हाँ मैंने की थी ये कोशिश, मगर ये बच निकला। यहां से देखिए ऐसी पार्टीज में कितनी वल्गर टॉक हो रही है, जहां मॉडर्न होने के नाम पर औरतें एक दूसरे से इस तरह के जाती मामला भी शेयर करती हुई दिख रही हैं, और कहने लगी ये बच निकला, अगर ये मेरा कहना ना माने तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। यूसुफ ने कहा है, मेरे रब कैद मुझे मंजूर है, बनिस्बत इसके कि वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर ना किया तो मैं तो इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहलों में शामिल होकर रहूंगा। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की। आप लोग सोचें, इस पे गौर करें कि सोसाइटी की ये कहानियां और कैसे ये मामलात हैं, आज के हालात आपको कुछ इससे मुख्तलिफ दिख रहे हैं, बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए याद रखिए कि आज के दौर में ये सूरतें पढ़ना समझना और इसके ऊपर अपने ऊपर नजर रख लेना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा हजरत यूसुफ ने अपने लिए कैद कबूल कर ली कि मुझे ये मॉडर्न स्टाइल नहीं चाहिए जिसमें औरतें मर्दों के पीछे भागे, और कहने लगी कि अल्लाह ताला तू मुझे इनसे दूर कर दे वरना मैं तो जाहलों में हो जाऊंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चाले इसे दफा की, बेशक वही सबको सुनता और जानता है। यहां से आप देखिए कि छोटा सा फिर अमल है हमारे लिए, आज के दौर में उसी मर्द की नजरें कायम रहेंगी जो अपनी नजरों को हया के साथ नीचे रखेगा, निकाह की डोरी होगी, और तीसरी चीज है नफिल रोजे। जब बाहर इतना गंदगी हो, इतना फितना हो, तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि भूखे के सामने खाना हो और उसे के खा नहीं सकते तो वो कहीं ना कहीं से तो चुरा ही लेगा ना। तो आज इस चीज का माँ बाप को बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। अगर हम मुस्लिम बच्चियां हैं तो हमें तो अपने ऊपर लेना है कि हमारे गेटअप, हमारे बाहर निकलने के अंदाज से कोई टेम्पटेड ना हो, लेकिन दूसरे ही बहुत सारे हैं जब बाहर लिबास और हिजाब की सही पाबंदी नहीं होती तो याद रखिए ये करप्शन फैलती है। आप इस साल पूरे दौरे कुरान के बाद मुझे लगता है जिस नतीजे पे पहुंचेंगी वो यही होगा कि अंदर घरों की इसलाह से ज्यादा बाहर की इसलाह की जरूरत है, ताकि दूसरों को पता चले कि वी आर मुस्लिम। जब एक कपड़ों और ऐसे टाइट्स में और ऐसे लिबासों में बच्चियां बाहर दिखती हैं, तो आप ये तो सोचिए कि मर्दों के दिल पे क्या गुजरती होगी। और वो बेचारे जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, जो अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं, क्या वो आपके इस हाल हुलिये से मजबूर होकर कोई गुनाह करना चाहते हैं? कल एक पिक्चर किसी ने भेजी थी, मैं शेयर भी नहीं कर सकती, जिसके अंदर यकीन करें कि फिगर्स लिखे हुए थे कि वेस्ट में रहने वाली यूथ का क्या हाल है। बस एक उसमें सुन लीजिए कि 57% यूथ, और मुस्लिम्स का था, नॉन मुस्लिम्स का नहीं था, कि वो 57% जो लोग हैं वो शादी से पहले वो सब काम कर चुके होते हैं जो कि शादी के बाद होते हैं। जब बाहर इतनी गंदगी है तो वक्त से पहले शादियां करें। इधर आपको एहसास हो कि उनकी भूख जाग रही है, शादी करें। मत तालीम को उजर बनाए, मत करें, पढ़ेंगे खुद ही कदमों पे खड़े होंगे। वो तो 2 साल का अपने कदमों पे खड़ा हो गया था, आप कह रहे हैं अभी अपने कदमों पे नहीं खड़े हुए, अभी इसको जॉब मिल जाए, अभी ये पढ़ ले, तो आप उनको फितनों में डालें कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे हराम करें, हमारे खानदानों में कोई ऐसी चीजें गंदी आ जाए। तो आज के दौर में अल्लाह के नबी के इस हुक्म पे उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की जरूरत है कि जब आपके बच्चे बालिग हो जाएं तो उनके निकाह कर दें। जिस माशरे में जिना के तो इतने असबाब है, अब जिना तो लफ्ज ही छोटा लगता है, अब तो उसे आगे की मुसीबतें शुरू हो गई, वहां शादी को 18 साल तक डिले कर देना और उसके बाद फिर दूसरी बातें पीछे पड़ती हैं, तो लिहाजा हजरत यूसुफ ने फिर कहा मुझे कैद में कर दो, ना ये मुझे दिखे ना ये मेरे पर नजर डाले और मैं अपने आप को पीछे कर लूं। इस पे हजरत आयशा अल्लाह के नबी को कहा करती थी कि अल्लाह के नबी, यूसुफ वालियों ने तो अपनी उंगलियां काटी थी यूसुफ को देखे, अगर वो आपको देखती तो अपने दिल काट लेती। और हकीकत है कि नबी सल्लम हजरत यूसुफ से भी ज्यादा खूबसूरत है। हमारे कल्चर में हजरत यूसुफ की खूबसूरती बहुत आम है ना, किस तरह खूबसूरत है, लेकिन आप पूरे कुरान में देखेंगे एक सेंटेंस भी नहीं है कि ही वॉज ब्यूटिफुल, ही वॉज प्रिटी। हर जगह मोहसिनी, अंदर का हुसन, खूबसूरती, जाहिरी खूबसूरती अल्लाह की तरफ से आती है, अंदर का हुसन आपने खुद पैदा करना होता है। लिहाजा हुआ क्या, फिर इन लोगों को यह सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसको कैद कर दें, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीख निशानियां देख चुके थे। क्या पता चला कि जिन मर्दों ने अपनी औरतों की खराबी देखने के बावजूद उसको छोड़कर यूसुफ को कैद कर दिया, तो ये बिगाड़ की हद थी। और यहाँ ये भी पता चलता है कि नेकी और तकवा खुद बोलता है, कहना नहीं पड़ता, बोल बोल कर ऐलान नहीं करना पड़ता। अब हुआ क्या, यूसुफ की जिंदगी का तीसरा दौर शुरू होता है। कैद खाने में दो गुलाम भी इनके साथ दाखिल हुए। एक रोज इनमें से एक ने कहा मैंने ख्वाब देखा है मैं शराब कशीद कर रहा हूं, दूसरे ने कहा मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां रखी हुई हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। हर जगह यूसुफ गए, बाप के घर कुएं में, फिर अजीज मिस्र के घर, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। और जेल तो एक आखिरी हद होती है ना किसी इंसान के रहने की। हर जगह एक टाइटल मिल रहा है, इन्ना नरौका मिनल मुहसिनीन। ये टाइटल आज उम्मत मुस्लिमा को इक्वायर करना है। हम कहीं भी चले जाएं, लोग कहें यू आर गुड पीपल, यू आर मुहसिन, तुम कामों को अच्छा करते हो, तुम हो। पूरी सूरत में यूसुफ के जाहरी हुसन का, आंखों का, कानों का जिक्र नहीं, लेकिन अंदर के हुसन का। आज कहते हैं प्रेगनेंसी में सूरह यूसुफ पढ़ो बच्चा खूबसूरत होगा, कभी सुना? मैं कहती हूँ आप अपने बदसूरत से बदसूरत बच्चे को सूरह यूसुफ पढ़ा दे और वो इस पे अमल कर लेगा, वो सबसे खूबसूरत हो जाएगा। ये सिर्फ हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स है कि हमें गोरे और चिट्टे रंग का बहुत शौक होता है, लेकिन याद रखिए कि असल खूबसूरती जो होती है वो अंदर की होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने में भी लोग मुहसिन कह रहे हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो कितना पीपल पर्सन थे। और मुहसिन बनता ही वो है जिसके दिल में इंसानियत का दर्द होता है। लिहाजा ख्वाब देखने वाला कहने लगा कि मुझे ख्वाब की ताबीर बताएं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौका मिला, यूसुफ ने कहा यहाँ जो खाना आपको मिलता है इसके आने से पहले इन ख्वाबों की ताबीर मैं आपको बताऊंगा, ये इन उलूम में से जो मेरे रब ने मुझे अता किए। देखिए डाउन टू अर्थ, बड़ाई नहीं की, हाँ हाँ बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, उस स्कूल गया, उस कॉलेज में गया। और यहाँ एक सवाल करूंगी, किस यूनिवर्सिटी में गया यूसुफ, कौन सा उनके पास अवार्ड था? लेकिन फहम और फरासत कहाँ से मिली? अल्लाह के खौफ से मिली। जब अल्लाह का खौफ आएगा ना तो हमें हिकमतें भी मिलेंगी और फहम और फरासत भी मिल जाएंगी। और ये मिला कब, इसको हाईलाइट कीजिएगा। हजरत यूसुफ कहते हैं इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमि ला युमिनून बिल्ला, वाकया ये कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखरत का इनकार करते हैं। यानी हिकमत कब मिली, जब खानदानों के तौर तरीके छोड़ दिए और अल्लाह को मान लिया। अपने बुजुर्गों इब्राहिम इसहाक और याकूब के तरीके को इख्तियार किया। हमारा ये काम नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर। किसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया। दुआ करें अल्लाह हमें सब के बंदे ना बनाए, रब के बंदे बना दे। बला कि अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ कैद के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफरिक रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। इसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो इसके सिवा कुछ नहीं है। बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनत नाजिल नहीं की। फरमा रवाई का इक्तदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं। इसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। ठीक यही सीधा तरीके जिंदगी है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ कैद के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने बादशाह यानी शाह मिस्र को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो इसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया इस बात का जो तुम पूछ रहे हो। क्या पता चला कि जब कैदियों को यूसुफ की जरूरत पड़ी तब उनको तबलीग की, और तबलीग में फिर देखिए नुकता वही है तौहीद का। तो यहां से पता चलता है कि आज उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह न करे कभी को जेल में भी डालते हैं किसी इल्जाम में, वो वहां भी मुहसिन बन के लोगों को दुनिया की सबसे खूबसूरत दौलत शेयर करेगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ख्वाब की ताबीर दी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों में से जिसको यूसुफ ने कहा था आजाद हो जाएगा वो आजाद हुआ। फिर इनमें से जिसके मुतल्लिक था कि वो रहा हो जाएगा, इससे यूसुफ ने कहा अपने रब यानी शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना। यूसुफ ने असबाब यूज किए लेकिन अल्लाह की तकदीर गालिब आ गई। कैसे? मगर शैतान ने इसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने रब यानी शाह मिस्र से इसका जिक्र करना भूल गया और यूसुफ कई साल कैद खाने में पड़े रहे। सच्ची बात है, जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपके बच्चों को कोई सदमा ना आए, गम ना आए, जो मिलना होता मिल जाता है। यूसुफ के नसीब में 7 साल की कैद थी, छोटी कैद नहीं है ये। अगर वो ख्वाब उसका जो बताया और उसको कहा कि बादशाह को बताना कि एक बेगुनाह कैदी पड़ा हुआ है, तो वो उसको आजाद करा सकता था। लेकिन अल्लाह ने जो तकलीफ देनी है वो देता है। पीछे पड़ चुके हैं यमसकल्लाहु बिद्दुर्रिन फला काशी फला, तो अभी वक्त नहीं आया था, उस शख्स को भूल गया। लेकिन अब असबाब पैदा हो रहे हैं। कैसे? और आप देख रहे हैं इस पूरी कहानी में ख्वाबों का बड़ा जिक्र है और हकीकत है ख्वाब। ख्वाबों के बारे में लेक्चर मौजूद है कि ख्वाबों की हकीकत क्या होती है, ड्रीमिंग। लेकिन मैं तो इस वक्त ये कहूंगी कि बंद आंखों के ख्वाबों की बजाय खुली आंखों के ख्वाब देखने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाबों की हिकमत दी थी, कैसे उसकी ताबीर है। आज भी ऐसे साहिब फरासत लोग मौजूद हैं कि दुनिया के नक्शे को देख कर बता सकते हैं कि कल इसकी ताबीर क्या होगी। अल्लाह ताला हमें अच्छे अच्छे ख्वाब देखने वाला बना दे। एक रोज बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। अहले दरबार मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। इन दोनों कैदियों में से जो शख्स बच गया था, इसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई और इसने कहा मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, जरा मुझे कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। यानी जब बादशाह को ख्वाब आया तो इनको याद आया कि मेरे ख्वाब की भी ताबीर एक शख्स ने दी थी, अब अपने मतलब के लिए यूसुफ के पास जा रहा है। अब जरा देखिएगा कि मुहसिन कौन होते हैं। इतने साल के बाद यूसुफ को दिखे और यूसुफ उनको कह चुके थे कि मेरी बात करना बादशाह से, और वो भूल गए। इसके बावजूद उस कैदी को इतना यकीन था कि यूसुफ मुझे ताना नहीं देंगे कि अच्छा जी अब अपना काम पड़ा तो आगे। बल्कि आप देखिए इसने जाकर कहा यूसुफ है सरापा रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बताइए कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालियां हरी हैं और 7 सूखी हैं। शायद के मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद के वो जान लें। यूसुफ ने कहा 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे, इस दौरान में जो फसलें तुम काटो इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारे खुराक के काम आए निकाल लो और बाकी को इनकी वालियों में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, इस जमाने में ये सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम इस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो कुछ तुमने महफूज कर रखा हो। इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। क्या पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ये के ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि तदबीर भी बताई कि उस कहत से कैसे बचना है। तो ये मुहसिन है। आज मुझे और आपको इस दर्जे का मुखलिस होने की जरूरत है। लोगों के खैर ख्वाह, लोग आपसे थोड़ी बात पूछे आप उनको ज्यादा बताएं ताकि वो आपकी बात के ऊपर अमल करके आपका एहसानमंद हो सके। बादशाह ने जब इतनी जबरदस्त किस्म की ताबीर सुनी तो क्या कहा, बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लाओ। जब बादशाह का कासिद यूसुफ के पास पहुंचा तो इसने कहा अपने रब के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। या फिर देखिए जिना की बात नहीं, गुनाह की बात नहीं कर रहे बल्कि उनके उस अमल की बात को ला रहे हैं। इससे पता चलता है कि ईमान वाला दूसरों को शर्मिंदा नहीं करता। और यूसुफ का यही हुसन हमें आज दिख रहा है कि जब हम दूसरों को शर्मिंदा करने की बजाय उनको साइड देंगे तो लोग हमारे ज्यादा करीब होंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो निकलने से इनकार कर दिया, बस कहा कि जरा उस मुकदमे को खुलवा कर देखें कि उसका क्या हुआ था, मेरा रब तो इनकी मक्कारी से वाकिफ ही है। इस पर बादशाह ने इन औरतों से पूछा तुम्हारा क्या तजुर्बा है इस वक्त का जबकि उसने तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की। सब ने यक जुबान होकर कहा हाशा लिल्ला, हाशा लिल्ला ऐसी है जैसे आज के दौर में हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। मालिम नलैहि मिनसू, हम तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं पाते। अजीज की बीवी बोल उठी अब हक खुल चुका और मैं ही थी जिसने इसको फिसलाने की कोशिश की, बेशक वो बिल्कुल सच्चा था। नोट करिए इन जुमलों को। अगर आपके ऊपर इल्जाम लगे, जिंदगी में लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं बहुत इल्जाम लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नए नए रिश्ते जुड़ रहे होते हैं, वो आपको नहीं जानती, आप उनको नहीं जानती, अब क्या हुआ, आप सब्र कीजिए। अगर आप हक पे ना, देखिए अगर उस दिन अजीज मिस्र के सामने मामला पूरा खत्म हो जाता तो सिर्फ अजीज मिस्र और वो औरत ही जानती कि यूसुफ सच्चे थे। वहां मामला खुला, उसके बाद सारी औरतों के बीच में उस औरत ने कहा कि हाँ मैंने इसको बहकाया था। आज पूरे दरबार में, पूरी पब्लिक के सामने, मीडिया पे आके औरत कह रही है बल्कि सारी औरतें कह रही हैं कि हमने फैसला था, तो यूसुफ की बेगुनाही साबित हुई ना। तो जो लोग अपनी बेगुनाही में खुद नहीं बोलते अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खोल देता है। और ज़ालिक लियअलमन नीला मखुन खुबिल गईब, और यूसुफ ने कहा इससे मेरी गरज ये थी कि अजीज से जान ले कि मैंने दर पर्दा इसकी खयानत नहीं की, और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। और वह माउबर नफ्सी नफ्स अलम्मारा तुम बिस्सू, और मैं अपने नफ्स की कुछ बरात भी नहीं कर रहा, नफ्स तो बदी पर उकसाता है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। यहाँ पे यूसुफ का कलाम पूरा होता है। क्या पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और अल्लाह ताला ने सबके बीच में उनको रखा। इसके बावजूद उनकी आजजी की हद देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को पीछे डाल दिया। तो मेरे और आपके लिए इसमें बहुत सारे सबक हैं। अपने आप को सच्चा रखिए, हक पे रखिए, अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोलेंगे। हालांकि पारा यहाँ पूरा होता है लेकिन बात नहीं पूरी हो रही, बात आगे चलती है, तो हम यहीं रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। कल हम इसको पीछे से मिलाते हुए आगे लाएंगे। आप लोग ये कीजिए कि इसके ऊपर आप कुछ पॉइंट्स नोट करके लाएं कि कैसे हम इसको आज अपने हालात से रिलेट करके कोई एक ऐसी चेकलिस्ट बना लें कि ये हमने कर लिया, ये हमने नहीं किया, इंशाल्लाह ताला इससे फायदा होगा। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह।